द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के कटवा से संन्यास लेने का वर्णन तो किया है, जगह कौन कौन से स्थान में गए, नाम दिए हैं, गांव के डिटेल में रूट बताया है, लेकिन उन्होंने इस लीला का वर्णन नहीं किया। तो उन्होंने रूट का वर्णन नहीं किया, लेकिन कृष्णदास कविराज ने उनके इस लीला का वर्णन किया है बहुत ही विस्तार से। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु रमिलान ऐसा लीला प्रभुर दास वृंदावन विस्तारी करिया चेन उत्तम वर्णन। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर में जाके कैसे दर्शन किया, सारंग भट्टाचार्य से कैसे मिले, तो इन सबका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है चैतन्य भागवत में। सहज विचित्र मधुर चैतन्य विहार वृंदावन दास मुखे अमृते रधार। कहते कि महाप्रभु के जो कार्यकलाप है, एक तो विचित्र है और दूसरे है मधुर। और ये मधुरता वृंदावन दास ठाकुर के मुख से निकलती है अमृत की धार के समान। अतएव तह वर्णी ले हय पुनरुक्ति दंभकर्णी वर्णी जदी तैचे नहीं शक्ति। तो इन सब घटनाओं का वर्णन पहले ही किया है वृंदावन दास ठाकुर ने, जो पहले कुछ चीजों का हमने बताया था। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं उन चीजों को दोहराऊंगा नहीं जो उन्होंने विस्तार से वर्णित की हैं, नहीं तो ये दंभ हो जाएगा और मुझे गर्व हो जाएगा, तो इसलिए ये अच्छा नहीं होगा। और क्योंकि दूसरा कारण यह भी है कि मुझ में शक्ति नहीं है। चैतन्य मंगल जहा करी लवर्णन सूत्र रूपे से ही लीला करी सुचान। तो उन्होंने कहा कि जो लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की सूत्र रूप विस्तार से वर्णित की हैं, उनको मैं सूत्र रूप से लिखूंगा और जो उन्होंने सूत्र रूप से लिखी है मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। इसलिए दो ग्रंथ बहुत यह है, अद्भुत है, रेपिटेशन नहीं है किसी लीला का। अतएव तार पाए करे नमस्कार तार पाए अपराध ना हो का मार। ये जो भक्त है उसका ये लक्षण है कि वो हर समय सावधान रहता है कि किसी और वैष्णव के प्रति काया मन और वाणी से अपराध ना हो। हमने कई बार सुना कि कितनी बार उन्होंने बोला है वृंदावन दास ठाकुर के प्रति अपराध ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, तो इतने कॉन्शियस है, सावधान है। यही मत महाप्रभु चलीला नीला चले चारि भक्त संगे कृष्ण कीर्तन कुतूहले। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद वो वृंदावन की ओर निकले थे और नित्यानंद प्रभु ने उनको धोखा देके कहा कि हम जा रहे वृंदावन की ओर, राड़ देश से होते हुए जहाँ गंगा के किनारे से जाते थे वो कहते थे ये यमुना है, और यमुना कहते कहते शांतिपुर पहुंचे जो गंगा के किनारे हैं, और अद्वैत आचार्य वहां बोट और एक कोपिन लेके खड़े थे और महाप्रभु गए और स्नान किया और यमुना का गुणगान कर रहे थे और फिर अचानक अद्वैत आचार्य को देखा। तो उन्होंने देखा आप यहाँ क्या कर रहे हो कि आपके लिए बोट लेके आया हो और कोपिन लेके आया हो, एक ही कोपिन होता था महाप्रभु के पास। तो इस प्रकार शांतिपुर जाते हैं सारे संन्यास के बाद, पहली बार सारे नवद्वीप के वैष्णव से मिलते हैं और वहां से फिर सचिव उनकी माँ से मिलते हैं, उनकी माँ कहती है जगन्नाथपुरी में रहो। हाँ, क्योंकि जगन्नाथपुरी क्या है नवद्वीप के लिए, एक ही रूम है जिसके दो कमरे हैं, सचिव माता कहती है। हाँ, जैसे एक रूम में दो कमरे, क्योंकि नवद्वीप से बहुत सारे वैष्णव जगन्नाथपुरी जाते थे और वहां से आते रहते थे पहले से ही, वहां, ताकि आप वृंदावन चले जाओगे तो फिर से आपके बारे में सुनने को नहीं मिलेगा, आपका दर्शन मतलब देख नहीं पाऊंगी, तो आप नजदीक रह जाओ, सची माता ने कहा। तो चैतन्य महाप्रभु अपने चार भक्तों के साथ, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और मुझे नाम याद नहीं आ रहे, तो उन भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। और ये जाते जाते इनका ट्रैवलिंग कैसे था कि महाप्रभु सन्यासी थे तो ये लोगों के घर में जाते थे, धनवानों के जहां भी कोई मिलता था अपना जो वस्त्र आगे करके महाप्रभु उनसे भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांगते थे और रास्ते के किनारे ये लोग कुकिंग करते थे, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, और वहां खाके उधर ही सो जाते थे रास्ते के किनारे, या फिर कभी किसी मंदिर में रह जाते थे टूटे फूटे। इस प्रकार से उनका ये दिन क्रम था जगन्नाथपुरी जाने का। वृंदावनदास ठाकुर ने डिटेल में दिया है कि कौन से गांव गए कौन से, तो आज भी कई गौड़िया वैष्णव इतने ये है कि वो जगन्नाथपुरी जाना मीन्स वो कटवा से शुरू करते यात्रा, जहां जहां महाप्रभु जिस गांव गए उस रूट से जाते हैं पूरी तक। और अभी मैंने सुना था कि अभी इस बार महाप्रभु के संन्यास लीला को 500 साल होंगे शायद इस साल, तो इस साल बहुत बड़ा संकीर्तन जा रहा है कटवा से, उस रूट को फॉलो करते हुए जगन्नाथपुरी, और कई सारे महाप्रभु के ड्यूटीज बना के लोगों को बांटे जाएंगे, ऐसा कुछ है प्रोग्राम। तो विशेष कई वैष्णव बड़े ये रहते हैं महाप्रभु के, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत दृढ़ थे, कहते हैं कि कहते जहां जहां महाप्रभु नहीं गए वो स्थान में देखने की इच्छा नहीं है मुझे, उस स्थान में नहीं जाऊंगा, शरणागति बुक में कहते हैं। इस प्रकार से इनका ये ट्रैवलिंग जा रहा था। पथे बड़ा बड़ा दाने विघ्न नाही करे, तासवारे कृपा करे आयला रे मुनारे। तो कई सारी नदियां कई सारे रास्ते पड़ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु उन सबको पार करते करते रेमुना में आ गए, रेमुना नाम के गांव में आ गए। हाँ मेरे पीछे दोहराइए, रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन। रेमुना में गोपीनाथ परम मोहन, इतने सुंदर है गोपीनाथ, ध्यान से देखेंगे, विशेष रूप से कभी रेमुना जाते हैं तो उनका दर्शन करना मीन्स उनके मंगल आरती को अटेंड करना, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देंगे वो विग्रह, वही तो दिखाई नहीं देते बाकी समय में। अगर आपने मंगल आरती आते नहीं की है तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मंगल आरती में आप बिल्कुल उनके पास जाते हो, ऐसे ऊपर है गोपीनाथ और विवेकानंद प्रभु के गोविंद वगैरह है वहां तो, और उनको बहुत थोड़ा सा कपड़ा पहनाते मंगल आरती में, तो सब कुछ उनका ब्यूटी दिखाई देता है, कृष्ण की भुजाएं खुली हो, जैसे ठंड के दिनों में पार सर्दी इतने भव्य नहीं लगते, गर्म के दिनों में सब कुछ ओपन है और ब्यूटी और बढ़ती है भगवान की। तो गोपीनाथ का भी वैसा ही है, गोपीनाथ जो भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था, गोपीनाथ विग्रह अपने बांध से बनाया और सीता देवी को दिया, जब ये लोग चित्रकूट में थे तो भगवान राम ने देखा कुछ ग्वाल जा रहे हैं गव्य चराते हुए, तो इनको स्मरण आ गया कृष्ण लीला का, भावेश में आ गए और उनको आंसू वगैरह आने लगे उनके, सीता ने देखा कि मेरे पति को क्या हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इस रूप में लीला करूंगा मेरे स्वयं रूप में, तो फिर मैं उस रूप को देखना चाहती हूँ और उसकी पूजा करना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने अपने बाण से उस विग्रह को बनाया, सीता देवी को दिया, और सीता देवी फिर उस विग्रह का गोपीनाथ का जो गोपियों के नाथ है गोपीनाथ, तो गोपीनाथ का पूजा करते थे, और फिर चित्रकूट से वो आने के बाद वो विग्रह उधर ही रहे। ओरिसा के राजा थे राजा लांगुड़ा नरसिम्हा देव, या और एक दूसरे राजा थे, तो ये इन्होंने कोणार्क मंदिर बनाया था, तो कोणार्क मंदिर का ओपनिंग होने वाला था, तो उसके लिए वो इन्विटेशन देने कई राजाओं को गए थे पर्सनली, तो ये गोपीनाथ उनको मिले वहां, तो ये अपने साथ ले आए गोपीनाथ को, और जैसे हाथी पालकी और सब घोड़े सैनिकों के साथ आ रहे थे गोपीनाथ के साथ, तो ये जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है वहां से गुजर रहे थे, तो वो उन्होंने वहां रेस्ट किया रात को, तो गोपीनाथ उनके सपने में आए राजा के, और राजा को कहा कि मुझे इस स्थान में रहना है, हाँ, क्योंकि वो स्थान इतना सुंदर था उस समय भी, और आज भी आप जाते हैं, हाँ, गांव है वो और सुंदर है, तो उस समय तो बहुत सारे पेड़ तालाब और पशु पक्षी ऐसे काफी रमणीय स्थान। ये रेमुना नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो रमणीय था बहुत, तो इसलिए वो रेमुना पड़ गया शॉर्ट फॉर्म में। तो फिर गोपीनाथ के लिए उन्होंने वहां मंदिर बनाया और गोपीनाथ वहां रहने लगे। और ये गोपीनाथ इतने सुंदर है, रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहन, परम मोहन, कुछ तो मोहन होते लेकिन परम मोहन है। तो महाप्रभु वहां जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं, और जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां दर्शन करते हैं, तार पाद पद्म निकट प्रणाम करे थे, तार पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभु रमा था ते। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया तो उसी समय गोपीनाथ का जो मुकुट है, पुष्प का मुकुट, वो आके महाप्रभु के सर में आके गिर गया। चूड़ा पाया महाप्रभु आनंदित मान, बहु नृत्य गीत कैल लैया भक्तगण। तो महाप्रभु के सर में जैसे ही वो मुकुट पड़ता है गोपीनाथ का, वो बहुत आनंदित हो जाते हैं और सारे भक्तों को एकत्रित करते हैं, प्रसन्न होकर जोर से कीर्तन करते हैं,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
नाना रूपे कृत्य कैल प्रभु रसेवान, सही रात्रि तहा प्रभु करी लवंशान। तो कई प्रकार की उनकी सेवाएं की, और महाप्रभु की वहां के कई लोगों ने, और फिर महाप्रभु वहां उस रात के लिए रुके। महा और रुके थे वो, ये खीर खीर खाने के लिए रुके थे महाप्रभु एक्चुअली। महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा लोभ, इस चीज का लोभ, तो ये परंपरा ही हमारी है, हमारा दोष नहीं है, हमारे जो मेन आचार्य है लॉर्ड चैतन्य इतना खीर, और वो है अमृत के लिए। जब ये सुना था तो ऐसे लग रहा था कब जाऊंगा, जब गए थे तो हम पूरा बड़े बड़े पात्र लेके पीते थे उसको। महाप्रसाद क्षीर क्षीर लोबेर हिला प्रभु तथा, पूर्वेश्वर पुरी तारे कही याचेन कथा। तो उन्होंने सुना था इस खीर की महिमा, किन से सुना था, अपने गुरु से। तो शिष्य का मतलब है जो सुनता है, जो सुनता है वो शिष्य नहीं है। फिर शिष्य का सबसे पहला गुण है, जो सुनता नहीं वो शिष्य नहीं है, और जो सुनता है वही शिष्य है। तो महाप्रभु ने अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुना था और उनको स्मरण आया, और सुनने से वो खीर का ग्लोरी पता चला, और फिर वो रुके वहां खीर खाने के लिए। क्षीरज क्षीर चोर गोपीनाथ प्रसिद्ध तारणाम, भक्तगणे कहे प्रभु सहित आख्यान। लॉर्ड चैतन्य अभी बोलने लगे उनका प्रवचन, संन्यास के बाद ये पहला प्रवचन था लंबा, महाप्रभु का फर्स्ट टॉक। उन्होंने छोटा सा टॉक दिया था वहां, कहा शांतिपुर में, जब वो अद्वैत आचार्य के घर में एक हफ्ते के लिए रुके थे, जबरदस्ती रुके थे। तो यहाँ उन भक्तों को सुनाने लगे किस चीज के बारे में, क्षीर चोरा गोपीनाथ के बारे में। पूर्वे माधव पुरी लागे क्षीर कैला चोरे, अतएव नाम है ला क्षीर चोरा हरि। तो मेरे पीछे दोहराया, पूर्वे माधव पुरी लागे क्षीर कैला चोरे, पुरी लागे क्षीर कैला चोरे, अतएव नाम है ला क्षीर चोरा हरि। पहले महाप्रभु कहते ये अभी की कथा नहीं है, कब की है, बहुत पहले। माधवेंद्र पुरी के नाम के भक्त थे जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी किए थे, और इसलिए उनका नाम क्या हुआ, खीर चोरा। पूर्वे श्री माधव पुरी आयला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। फिर अभी वो कथा सुनाने लगे। तो मन जहां जिस तीर्थ स्थान में आप जाओगे वहां श्रवण नहीं करेंगे तो फिर आनंद नहीं है। जैसे हम गए वृंदावन सोचो, और वो मदन मोहन मंदिर गए, वहां पत्थर देख लिए बहुत ऊंचे टूटे फूटे हैं, और घूम लिया ऊपर से नीचे, और बंदर को देख लिया और आ गए, तो फिर जाने का आनंद नहीं आता। लेकिन जब आप बैठते हैं, उस देखित के बारे में सुनते हैं, या उन वैष्णव के बारे में सुनते तो कितना अप्रिशिएशन बढ़ता है, वेरिफिकेशन हमारा होता है। तो ये महाप्रभु ने सब कुछ करके दिखाया। यात्रा ले जाओगे तो वहां जाके कथा भी करो साथ साथ उस स्थान के बारे में। तो लॉर्ड चैतन्य उनके साथ नित्यानंद प्रभु और मुकुंदस वगैरह थे, तो वो सब महाप्रभु भी बताने लगे उस स्थान का महिमा। यदि पूर्व पहले माधवेंद्र पुरे जब वृंदावन गए थे तो भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन, कहाँ चले गए? गिरी गोवर्धन चले गए। प्रेम मत्त नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नाही स्थाना स्थान। तो कृष्ण प्रेम में इतने मग्न थे कि उनको पता नहीं था कि रात है या दिन है, कभी क्षण में उठ जाते थे कभी गिर जाते थे। इस प्रकार से ये माधवेंद्र पुरी बहुत अद्भुत वैष्णव है हमारे इस गौड़िया संप्रदाय से। हमारे संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। तो ये ब्रह्म, फिर मध्वाचार्य और फिर ये आ गए गौड़िया। तो ये गौड़िया जो शाखा है वो माधवेंद्र पुरी से निकली। और चैतन्य चरितामृत में जब आप चैतन्य ट्री का वर्णन पढ़ोगे, भक्ति वृक्ष का वर्णन, तो उसमें आता है वर्णन इनका कि ये है सबसे पहले बीज और ईश्वरपुरी के रूप में अंकुरित हुए। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही उसकी ट्रंक बने, ट्रंक को क्या कहेंगे, तना, और स्वयं ही फ्रूट्स बने और बांटने भी लगे। तो महाप्रभु ने तो पूरे वृक्ष को फैला दिया उनकी कई शाखाओं के द्वारा। तो ये अद्भुत है माधवेंद्रपुरी। शैल परिक्रमा करे गोविंद कुंडे आसी, स्नान करे वृक्ष तले आछे संध्यायवसी। तो शाम के समय जब वृंदावन की में गोवर्धन की परिक्रमा की तो गोविंद कुंड में विश्राम करके स्नान करके वो बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया, आसी आगे धरे के छो बले लहासिया। तो जैसे वृक्ष के नीचे बैठे थे तो एक ग्वाल बाल आया दूध का बर्तन लेकर और हंसते हंसते महा माधवेंद्र पुरी के सामने उन्होंने उस बर्तन को किया। पुरी दुग्ध लया तुम्हें करा तुम्हें पान, मागी कहने नाई खाओ कि बा कर ध्यान। तो उन्होंने कहा कि कृपा करके आप इस दूध को पी लीजिए, क्योंकि आप खाने के लिए कुछ नहीं मांगते हैं, तो आप किस प्रकार का ध्यान लगा के आप बैठे हो। बालक सौंदर्य पुरी रहे संतोष, तहार मधुर वाक्य गेल भोकशो। तो उस बालक का सौंदर्य जब माधवेंद्र पुरी ने देखा तो माधवेंद्र पुरी बहुत संतुष्ट हो गए और उस बालक की मीठी वाणी को सुनकर ही इनका भूख और प्यास खत्म हो गया माधवेंद्र पुरी का। पुरी कहे के तुम्हें कहा तुमार वास, के मते जानी ले आमी करी उवास। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा कि तुम कौन हो, के तुम्हें, बंगला सीख सकते हो चैतन्य चरितामृत को रोज गाते रहोगे तो बंगला अपने आप आ जाएगा। के तुम्हें, तुम्हार की परिचय है, आपका क्या परिचय है। एक हमारे सन्यासी गए मायापुर में प्रिंटिंग प्रेस में गए, उन्होंने अपनी किताब छापने दी थी तो बता रहे थे कि किस प्रकार से स्कूलों में ये बम्बार्डिंग किया जाता है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं। तो वो गए अपनी किताब देखने तो वहां स्कूल के कुछ क्वेश्चन पेपर छप रहे थे बंगला भाषा में। तो इन्होंने क्वेश्चन पेपर को उठाया कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं स्कूल के। तो उठाया तो एक क्वेश्चन था तोमार की परिचय, मतलब आपका परिचय क्या है। तो अभी एक सन्यासी ये भक्त है तो आपको पूछा जाए कि आपका परिचय क्या, आप कौन हो। तो हम सबको पता है हम कृष्ण के दास है या फिर दासानुदास है या फिर आत्मा है। तो जैसे बाय चांस टीचर भी वहां था, प्रिंटिंग प्रेस में आया था। तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार से मैं उत्तर दे दे तो कितने मार्क मिलेंगे। वो टीचर कहते जीरो। कहते उत्तर चाहिए कि मैं इंडियन हूं, मैं बंगाली हूं, इस प्रकार का। तुम्हार की परिचय, अपना परिचय क्या है, मैं बंगाली हूं। इस प्रकार से ये भी पूछ रहे माधवेंद्र पुरी की क्या तुम कौन हो, कहां तुम्हारा निवास है और तुम कैसे जान गए कि मैं उपवास कर रहा हूं। बालक कहे गोपा मैं यही ग्रामे बसी, हमारा ग्रामे ते कह ना रहे उपवासी। बालक ने कहा कि मैं तो इसी गांव में रहता हूं और हमारे गांव में कोई उपवासी मतलब फास्टिंग नहीं करता है, फास्टिंग अलाउड नहीं है। जैसे जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं पालन करते, पूरा जगन्नाथ का राई दाल डालमा सब खाते रहते हैं, लेकिन महाप्रभु के भक्त हाँ एकादशी पालन करते हैं। महाप्रभु जब थे वर्णन आता है ना, प्रसाद अन्न भोजन नहीं करना चाहिए बिना एकादशी बिना, ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में आता है, क्योंकि उनका जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य पान खाता था एकादशी के दिन, और वो उनके सामने आके दिखाता था गोपाल भट्ट गोस्वामी को, लाल लाल भट्ट गोपाल गोस्वामी थे, उसको डांट लगाते थे रात कल, कहते प्रसाद है ये राधा रानी का प्रसाद है, हरिवंश राय उनका नाम था, तो उनको कृपा नहीं मिली उनकी गोपाल भट्ट गोस्वामी की, गुरु के आज्ञा उनका पालन नहीं किया। एकादशी के दिन पान खाके वो हरिवंश आते थे गोपाल भट्ट के सामने राधा रमन मंदिर में दर्शन करने, और बस जाने माने उनके शिष्य थे, और पहले एकादशी के दिन आए पान खाते हुए गोपाल भट्ट के सामने, तो गोपाल भट्ट ने कहा कि तुम नहीं जानते कि ये सब नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, तो कहते नहीं प्रसाद है ये राधा रानी का प्रसाद है। उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने वो वाक्य बोला कि एकादशी के बिना एकादशी के दिन जो प्रसाद आने वो भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो फिर अगले एकादशी को देखा फिर से आ गया है, और फिर से पांच चपाती ओट लाल करके गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने, गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत ये हो गया, कैसा ही शिष्य है तुम्हें नहीं, तुम्हें जाओ मेरे नजरों के सामने, डांट लगाई गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। तो वो शिष्य चला जाता है और फिर उनकी कृपा से तो वंचित हो गए, तो उनका अपराध भी किया उनके प्रति, जब जाता है तो उन्होंने अपना मंदिर बनाया है, आज भी है वो मंदिर राधा वल्लभ, राधा वल्लभ या कुछ है बाकी बिहारी के पास ही है। तो वो ये जब गए उन्होंने अपना मंदिर छोटा सा बनाया द्वितीय स्थापना की शायद, उसके बाद उस समय तो वृंदावन थोड़ा जंगल सा था, तो किसी फॉरेस्ट में घुसे तो कुछ डाकुओं ने उनको पकड़ा और उनका गला काट दिया, पूरा गला काट के यमुना में डाल दिया वहां। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सुबह सुबह उठे और अपनी पूजा के पहले वो जाया करते थे यमुना का स्नान करने के लिए केशी घाट में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान करने के लिए गए तो उनको आवाज आने लगी भगवान के नामों की, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। गोपाल भट्ट गोस्वामी को तो कुछ ये लगा, अद्भुत लगा, पाव हाथ पाव धो रहे थे कुछ कर रहे थे, तो देखा कि ये एक सर उनके बिल्कुल पास आ रहा है और उनके चरणों को ये कर रहा है, टच कर रहा है गोपाल भट्ट गोस्वामी की, तो कह रहा है मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए आप, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने चरण उसके सर के ऊपर रखे और फिर उसको फिर कृष्ण की कृपा मिली, तब भगवत प्रेम या भगवत भक्ति अनुकूल हुई उनको। फिर गोपाल भट्ट वापस आए, उन्होंने राधामोदर मंदिर और यहाँ गए, और बाकी जो वैष्णव थे गोस्वामी वगैरह हमारे जो भी उस समय बचे होंगे, कुछ गोस्वामियों ने तो शरीर छोड़ा था, जीव गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी थे, इन सबको जाके बताया कि आज मेरे साथ क्या घटना हुई, हाँ सबको जाके ये बताया। तो इस प्रकार से है कि उपवास तो उपवास ही करना चाहिए उपवास के दिन में, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो कई भक्त जगन्नाथपुरी में लॉर्ड चैतन्य को पूछने जाते थे कि एकादशी में तो जगन्नाथपुरी के लोग उपवास नहीं रखते, जगन्नाथ का प्रसाद पाते हैं, तो महाप्रभु ने कहा नहीं, गौड़िया वैष्णव जगन्नाथपुरी में भी एकादशी व्रत का पालन करेंगे। तो उसका वर्णन आता है एक बुक प्रेम व्रत है, जो उपदेशामृत में आप वो श्लोक पढ़ते हो ना परपट में, भालना खाई बो और भालना परी बो, प्रभुपद नीचे एक बुक का नाम लिखते प्रेम विवर्त, जगदानंद पंडित ने लिखा है, जिसमें हरिनाम की ग्लोरीज और इंस्ट्रक्शन है। तो फिर ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि उपवास नहीं रखता कोई यहाँ, के अन्न मागे खाय के दुग्धाहार आया चक जने आमे दियत आहार। तो फिर ये बालक कहने लगे कुछ लोग मांग कर खाते हैं, कोई दुग्ध आहार खाते हैं, लेकिन जो अयाचक वृत्ति के हैं अजागर वृत्ति वो उनके लिए अमित आहार मैं जाके देता हूं, क्योंकि अजगर क्या है वो घूमता नहीं, आपने प्रसाद की चिंता नहीं है, वो पेड़ के ऊपर बैठेगा और नीचे कोई जा रहा है तो ऊपर से आराम से गिरेगा उसके ऊपर, वही उसका आहार है, और मुंह में निकल लेगा और आप जाओगे मिस्टर राजागर प्लीज ईट मी अभी नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी फुल हो। तो ये अजागर वृत्ति है। अजागर वृत्ति ये नहीं है कि कुछ चीजें मिल भी रही है और फिर लॉकर में जाके रख भी रहे हैं और बाद में खाएंगे, ये भी अजागर वृत्ति नहीं है। अजागर वृत्ति में पूरी तरह से निर्भर, कृष्ण भेजेंगे तब मैं ग्रहण करूंगा। जलने ते श्रीगण तुम्हारे देखी गेला श्री सब दुग्ध दिया हमारे पाठाइला। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो गोविंदपुर में स्त्रियां आए थे जल ले जाने के लिए, उन सब ने आपको देखा है और मुझे इसलिए उन्होंने भेजा है। गोदोहन करे ते चाहे शीघ्र में जाव आर बारा सिया में यही भांड लई ये पॉट में ले जाऊंगा, मुझे अभी जल्दी है, गौओं को धोना है, दूध निकालना है, आप जल्दी दूध पी लो हाँ और फिर धोके रख दो उस बर्तन को। एत बले गेला बालक ना देखिए आर माधवपुरी रचिते हैल चमत्कार। तो उस बालक को देखकर माधवेंद्रपुरी के चित्त में बहुत आनंद हुआ था और उसको देखकर वो बालक तो चला गया। दुग्ध पान करे भांड दुया धोए या राखिला बाट देखे से बालक पुनः न आईला। तो इतने सिंसियर थे, बर्तन धोके भी रख दिया। हमारे साथ तो उल्टा होता है, कोई और धोता है हमारे बर्तन, प्रसाद हाल में कई बार हम प्लेट यूज करते फेंक देते, धोने वाले तो बहुत लोग हैं। तो लेकिन यहाँ इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने धोके धोया अपना बर्तन और रख दिया और फिर वेट करने लगे उसका। एक्चुअली ये सारी शिक्षा एक एक चीज पर प्रैक्टिकली हम सोचे ना तो बहुत एप्लीकेबल है हमारे जीवन में। बसीना मलय पूरी निद्रा नाई हाय शेष रात्रे तंद्रा है ल बाह्य वृत्ति लय। तो फिर ऐसे नहीं कि उन्होंने अभी दूध पी लिया और फिर सोने लगे गाढ़ निद्रा, नहीं निद्रा नाई हाय नाम ले रहे थे, हरि नाम ले रहे थे,
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो हरे नाम कर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन एंड में उनको निद्रा आई रात्रि जब शेष होने लगी। और जब रात्रि शेष होती है हाँ उस समय जब सपने आते हैं तो वो सही होते हैं, प्रभुपाद ऐसे किसी तात्पर्य में लिखते हैं। तो इनके साथ ऐसे ही हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में जो सपने आते हैं, लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते तो हमारे लिए नहीं है, मंगल आरती नहीं जाए तो फिर ठीक है। स्वप्न देखे से ही बालक जब तक केशव आर्य प्रभु है तो एक विशेष योजना है राधा पार्वती की। एक्चुअली कोई है हमारे पिता के समान हाँ जो हमें उठा के, एक्चुअली ये उनको बहुत लाभ है उनको स्पिरिचुअली केशव हरि प्रभु को, क्योंकि किसी व्यक्ति को भगवान की ओर भेजना उस व्यक्ति को बहुत बेनिफिट होता है। ध्रुव महाराज की जो माँ थी हाँ पथ प्रदर्शक गुरु थी, ध्रुव महाराज को भेजा कि भगवान तो जंगल में होते जाओ हाँ, लेकिन फिर उनको भी कितना बेनिफिट मिला। तो जो व्यक्ति लोगों को बढ़ाता है आगे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उसका 5% उस व्यक्ति को मिलता है जो भेजता है भगवान की ओर सबको। तो आप देखो कितना, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हाँ इतना परसेंटेज मिलता है उसके। एक गीत में भी उन्होंने इन चीज को बोला है प्रचार की इस विधि को। स्वप्न देखे से ही बालक सम्मुखे आसिया एक कुंज लिया गेला हाथे ते धरिया। कितना कृष्ण का केवल भगवान के भक्तों के साथ ही हो सकता है। माधवेंद्रपुरी के जीवन से आप एक चीज सीख सकते हो कि जो शुद्ध भक्त है उसके उसके जीवन का उसका जो जीवन है तो पूरी तरह से भगवान के हाथ में होता है। भगवान जैसा चाहे उससे वैसा करवाते हैं। तो इस सपने में आए बालक और उनको हाथ पकड़ के एक कुंज में ले गए, झाड़ियों में ले गए। कुंज देखा या कहे आमी यही कुंज रहा है शीत वृष्टि वाताग्नि से महा दुख पाए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कुंज में रहता हूँ और ठंडी और गर्मी से मुझे बहुत दुख अनुभव होता है। ग्रामेरे लोकानियामा काड़ कुंज है ते पर्वत ऊपर लैया राख भालमते। तो उन्होंने कहा कि आप गांव के लोगों को ले आओ और मुझे उस पुंज से बाहर निकालो और पर्वत के ऊपर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर मेरी स्थापना करो। एकमठ करे ताहा कर स्थापन बहु शीतल जले कर श्रीअंग मार्जन। उन्होंने कहा एक मठ या एक मंदिर बनवाओ और मेरी स्थापना करो और बहुत ठंडे जल को ले आओ और मुझे स्नान करवाओ, मार्जन कराओ। बहु दिन तुम्हारा पथ करे निरीक्षण कबे आसी माधवा मा करे बसेवन। देखो भगवान सेवा लेने के लिए वेट करते हैं, कहते कि मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रहा था। तो भगवान डेटी फॉर्म में क्यों अवतरित होते हैं? इसलिए केवल हमें मौका देने के लिए, भगवान को हम टच करेंगे, उनको सर्व करेंगे। हाँ, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करता है तो उसको डिफरेंट आस्वादन होता है, होने की शुद्ध होने के लिए शुद्ध भक्त उनको सर्व करता है नहीं, हम शुद्ध होने के लिए भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं। हाँ, तो फिर हम शुद्ध हो जाते, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान के साथ उनको सर्व करके उनके साथ जो रसों का आदान प्रदान करता है और भगवान भी उसका आस्वादन करते हैं। तो भगवान कहते कि बहुत दिन हो गए मैं आपकी राह देख रहा था कि कब मेरा माधव आएगा और मेरी सेवा करेगा। तो हमारा प्रेम अवश्य करे सेवा अंगीकार दर्शन दिया निस्तारी सकल संसार। उन्होंने कहा कि आपके प्रेम के कारण ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। माधवेंद्रपुरी के हृदय में बहुत प्रेम था कृष्ण के लिए, स्वयं कृष्ण उनके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं, ले आते हैं। और उन्होंने कहा इसलिए मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से निस्तारी बस सकल संसार, सारे लोग पतित लोग जो इस संसार में हो पावन हो जाएंगे। श्री गोपाल ये बहुत वंडरफुल प्यार है, अपना अपना परिचय देते हैं, तुम्हार की परिचय। अभी भगवान अपना परिचय बता दे कि मेरा परिचय क्या, पहले तो झूठ भी नहीं था, मैं इसी गांव का हूँ, तो अन्य और गांव का तो वृंदावन के है कृष्ण। तो अभी परिचय देते मेरे पीछे दोहराइए। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, ब्रज स्थापित आमे यहाँ अधिकारी, मेरा है परिचय। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन को धारण करता हूँ, वज्र स्थापना की है और इस वृंदावन का मैं अधिकारी हूँ। इतना कृष्णदास कविराज ने इतना सरल कर दिया, एक ही लाइन में पूरा सब कुछ, ये अद्भुत है एक्चुअली। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि बंगाली सीखेंगे लोग इस सीसी को पढ़ने के लिए, इसके ओरिजिनल जो बंगाली है जो लाइन है इनको केवल पढ़ने के लिए, और इसको पढ़ने मात्र से उनके जीवा में ऐसा टेस्ट अनुभव होगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज देखो कितने साल पहले उन्होंने कहा विदेशों से लोग आएंगे और वो भी बंगाली सीखेंगे केवल महाप्रभु के बंगाली टेक्स्ट इन ग्रंथों को चैतन्य चरितमृत को पढ़ने के लिए, कितना स्वीट है। शैलो परिहत्या कुंज लकाया सेवक मोर गेला पलाया। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ऊपर ही मेरी स्थापना हुई थी, लेकिन ब्लेच्छों के भय से जब आक्रमण हुआ था मुसलमानों ने तो पुजारियों ने मुझे झाड़ियों के बीच डाल दिया था। से हाय ते रही आमी यही कुंजस्ताने भल हैल आयला मा काड सावधाने। और इस कुंज रहो आप मुझे बाहर निकालो। एतबले से बालक अंतर्धान कैल जागिया माधवपुरी विचार करिल। तो ये बोलकर वो बालक अंतर्धान हो गए और माधवेन्द्रपुरी जग गए और विचार करने लगे। श्री कृष्ण के देखिन मुए नारी नु चिनिते एतबले प्रेमावेश पड़िल भूमिते। तो वो पश्चाताप करने लगे कि मैंने कृष्ण को नहीं पहचाना, कृष्ण तो मेरे लिए दूध लेकर आए थे, और वो लोटपोट होने लगे और रोने लगे जाने पर। समय करोदन कर कैला धीर आज्ञा पालन लागे हैला सुस्थिर। तो रो रहे थे और उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और आज्ञा पालन करने के लिए वो फिर तत्पर हो गए उनके चित्त को स्थिर करके। प्रात स्नान करे पूरे ग्राम मध्य गेला सब लोग एकत्र करे कहे तेला गिला। सारे कॉन्ग्रीगेशन को उन्होंने इकट्ठा किया वृंदावन के, पूरा कांग्रेगेशन ही है, ब्रज क्या है पूरा कांग्रेगेशन है, पूरा भरा हुआ है, यूथ यूथ भी है वहां, यूथ प्रीचिंग बॉल तथा क्या है, सारे यूथ यूथ प्रीचर है। अब देखो प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन दिया है वास्तव में पूरा वृंदावन को प्रकट किया है, डेटीज दिए हैं, साक्षात कृष्ण यूथ प्रीचिंग दिया है, पूरे गोल तका है कृष्ण के यूथ प्रीचिंग में, और कांग्रेगेशन की तो कमी नहीं है वृंदावन में। तो ये गए सारे कांग्रेगेशन भक्तों को बुलाया कि चलो गोपीनाथ गोपाल को निकालो बाहर। ग्रामेरेश्वर तुमार गोवर्धन दारे कुंजे अच्छे चलता रे बाहिर अजय करे, कि ये ग्राम आपके गांव का ईश्वर है जिसने गोवर्धन को धारण किया था, हाँ अभी वो झाड़ियों के बीच है, चलो उनको बाहर निकालते हैं। अत्यंत निबिड़ कुंज नारे प्रवेशते कुठारी को दाली लह द्वार करते। तो उन्होंने जब गए तो देखा कि बहुत घनी झाड़िया है जिसमें घुस नहीं पा सकते, घुस नहीं सकते। तो उन्होंने कुल्हाड़े फावड़े वगैरह अपने साथ लिए उनको तोड़ने के लिए काटने के लिए। सुनिलो कतार संगे चले ला हरिश कुंज काटी द्वार करे करे ला प्रवेश। तो भक्तों को वृंदावन के ब्रजवासियों को भवा माधवेंद्रपुरी के साथ खुशी खुशी से गए और झाड़ियों को काटने लगे, रस्ते को साफ करने लगे और उसमें प्रवेश किया जंगल में। ठाकुर देखी ल माटी त्रणे अच्छा दे देखी सब लोग है ल आनंद विस्मित। तो उन्होंने देखा कि ठाकुर तो मिट्टी के नीचे तिनकों से ढके हुए थे और माधवेंद्रपुरी को बहुत आनंद हो गया। आवरण दूर करे करे लिदे महाभारी ठाकुर कहे नारे चलाए थे। तो उस आर्चा विग्रह के ऊपर से सारे जो मिट्टी है झाड़िया है वो साइड में कर दी और जो गोपाल के जो विग्रह हैं इतने भारी थे कि जो उनको कोई हिला नहीं सकता था। महा महाबलिष्ठ लोक एकत्र करिया पर्वत ऊपर गेला पूरी ठाकुर लैया। तो इन्होंने जो बलिष्ठ भक्त थे उनको कहा कि उठाओ, कई भक्त ने उठा के गिरिराज के ऊपर ले गए। पाथरे रसिमा तने ठाकुर वसाइल बड़ा एक पाथर पृष्ठ अवलंब दिल। तो आल्टर कैसे था उनका, नीचे एक बड़ा सा पत्थर पीछे एक बड़ा सा पत्थर, जा गोपीनाथ गोपाल है हाँ, तो पत्थरों से ही वो था हाँ। तो इस प्रकार से गोपीनाथ गोपाल को ले जाते हैं और 900 घड़े जल ले आते हैं गोविंदपुर का पानी और उसके द्वारा उनको स्नान करवाते अभिषेक कराते हैं और बिगोल ढोल बज रहे होते हैं, स्त्रियां गा रही होती है। तो अभी फेस्टिवल था ब्रज में, इतना फेस्टिवल सारे लोगों को इस बात का पता चला और सब लोग कोई दूध ला रहा है दही ला रहा है घर में जो भी चीजें बैलगाड़ी में भर भर के ला रहे हैं। तो ये है सेवा की भावना। इसलिए वृंदावन के जो वासी हैं ये इनका जो प्रेम कृष्ण के लिए जितना अधिक है उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं इनके ऋण को नहीं चुका सकता, न पा रहे हम हाँ कहते न पा रहे हम मैं नहीं आपने आपका जो ऋण है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैंने गीता में तो गलत बोल दिया है, वो जो श्लोक वृंदावन वालों के लिए लागू नहीं होता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सदैव बजामि अहम, कहते जो जैसा भजन करेगा मैं वैसा भजन करूंगा, फेल हो जाते कृष्ण वहां, कहते कि वो श्लोक आपके लिए नहीं है हाँ। तो ये है, और जो मनमना भव मत भक्त श्लोक है वो केवल वृंदावन के लोगों के लिए है। भागवत में उसी लाइन को दोहराया है, मन मनस का वो वर्ड आता है भागवतम के दशम स्कंध में कि केवल ये जो श्लोक है मन मना भव मन, जिनका मन कृष्ण में लगा है पूरी तरह से वो केवल वृंदावन के लोग हैं। तो इस प्रकार से जितना ये आज भी आप जाते हैं ब्रजवासियों का कितना अनुराग है, आज भी आप जाते हैं तो उनके लिए तो कृष्ण बहुत क्लोज है, उनको बहुत प्रीति है। वहां के बालक जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि वृंदावन में कोई बालक जन्म लेते ही वो राधे राधे कहने लगता है। अब देखो हमारे यहाँ रोने लगता है या फिर और कुछ करने लगता है या फिर उसके मुंह में कोई चॉकलेट डाल देगा या कुछ कुछ भी चीजें हैं, लेकिन वहां है वृंदावन का वो सौभाग्य। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं जिसको हम कुछ चीजें पढ़ेंगे फिर आगे हम रेमुना की ओर जाएंगे प्यारों को पढ़ते हुए। तो कई सारी मिठाई बनाई गई, दूध दही घी सब कुछ लाया गया, तुलसी और फूल वगैरह और विविध प्रकार के व्यंजन बनाए गए। तो माधवेंद्र पुरी ने भगवान का अभिषेक किया, शुरू किया अभिषेक, कई मंत्रों का उच्चारण होने लगा और तेल से बहुत मालिश की। कृष्णदास केवराज कहते हैं बहुत तेल दिया कैला श्री अंग चिपकन, इतना तेल लगाया कि चिकना हो गया उनका जो बिल्कुल बेटी का शरीर जो है। और पंचामृत पंचगव्य से स्नान किया, कितने सौ घड़ों से उनको गोविंद कुंड का जल ये किया और शंख और गंध सुगंधित जल डाल के स्नान करवाया। तो इस प्रकार से बहुत उनका अभिषेक किया, उनके लिए कई प्रकार के, और वर्णन करते कि जितने घड़े उस एरिया में बनाए थे मिट्टी के वो सब लाए गए और उन सबके ऊपर भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और जो 10 ब्राह्मण हैं और 5 ब्राह्मण हैं वो सब रसेदार और सूखी सब्जियां बनाने में लगे हुए थे। तो यहाँ इतना वर्णन आया है प्रसादम का, भोग बनाया जा रहा है भगवान को, कोई चपातियों का ढेर के ढेर लगाया जा रहा है, राइस का ढेर। हाँ, तो इस प्रकार से कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं और फिर ये सारे व्यंजन माधवेंद्र पुरी ने बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ गोपाल को अर्पित किए हैं। और फिर जैसे और भी पता चला वृंदावन के अलग अलग गांव में कि गोवर्धन में वो प्रकट हो गए हैं गोपाल, तो हर एक गांव एक दिन का स्पॉन्सर करता था, एक दिन का एक गांव स्पॉन्सर कर देता था। और कृष्णदास कविराज ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है, कहते हैं कि मथुरा के जो लोग हैं बड़ा बड़ा धनी, बड़े बड़े धनी लोग थे मथुरा में, तो एक क्षत्रिय व्यक्ति ने पूरा मंदिर बना दिया। आप जब अन्य और गांव में जाते हैं परिक्रमा करते समय एक सफेद मंदिर दिखता है आपको, वो खाली है अभी मंदिर। उस समय क्या होता था, जब तक लॉर्ड चैतन्य गए नहीं वृंदावन तो हर कोई चढ़ता था, लेकिन लॉर्ड चैतन्य ने जाकर ये शिक्षा दी कि गोवर्धन कृष्ण से अभिन्न है। जब उनको इस गोपाल का दर्शन करना था महाप्रभु को, तो वो ऊपर नहीं चढ़े। हाँ, तो गोपाल ने ये इच्छा देखी कि लॉर्ड चैतन्य मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान ने क्या योजना की, चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति उस गांव में आया और उसने अनाउंस किया कि तुर्की जो सेना है वो आए हैं आक्रमण करने इस गांव में। तो फिर पुजारियों ने जो ये गोपाल ऊपर थे उनको नीचे उतार के लाया और यही पिक्चर हम हमारे टेंपल हॉल में देखते हैं। और लॉर्ड चैतन्य ने तब दर्शन किया, फिर लॉर्ड चैतन्य वो रखा एक गांव में, लॉर्ड चैतन्य गए 4 या 5 दिन, 2 महीने महाप्रभु वृंदावन में रहे थे, तो उन्होंने दर्शन किया गोपाल का बहुत, क्योंकि उनका हाथ ऐसे ये हरे आप नाथ द्वारा जाते हो तो उनका दर्शन कर सकते हो आज भी। तो कई प्रकार से उनकी सेवा का वर्णन किया। तो माधवेंद्र पुरी 2 साल तक रहे गोपाल की सेवा में और कई हर एक व्यक्ति ने एक एक गाय दान दे दी उनको, तो 1000 गायें हो गई थी गोपाल के पास, अभी उनकी गौशाला इतनी बड़ी थी। और फिर एक दिन इतना सारा फेस्टिवल होने के बाद बंगाल से 2 ब्राह्मण आए और उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देकर उनकी सेवा में उन्होंने रखा। और फिर जब 2 साल बीत गए, माधवेंद्र पुरी 90 साल के थे उनका एज, तो माधवेंद्र पुरी को फिर भगवान सपने में आते हैं एक दिन, और सपने में आकर उनको पहला ये स्नान आता है और माधवेंद्र पुरी को भगवान कहते हैं कि मेरे पीछे दोहराइए क्या कहते हैं, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, चंदन लेप तबे से जुड़ाए, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। तो कहते गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, गोपाल क्या करे पुरी गोसाई मेरा ताप नहीं जा रहा है, आपने इतना मुझे स्नान किराया खिलाया सेवाएं की, फिर भी गर्मी अभी बहुत हो रही है मेरे शरीर में, क्योंकि इतने सालों तक तो मैं नीचे रहा जमीन के नीचे, तो कहते आप क्या करो, मलय जो चंदन ले, मलय मलेशिया को मलय मलय हिल्स कहा जाता है प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, तो वो चंदन ले आओ और मुझे लेप दो, तब मैं ठंडक पहुंचेगी। देखो कितना ऑर्डर देते भगवान सेवा का। तो फिर ये 90 साल के थे, तब इन्होंने सोचा मलय जान जहा मिला चल है ते, अन्य है ते नहीं तुम्हें चल हरिते, तो ये और कोई नहीं कर सकता, तुम स्वयं ही जाओ और नीलाचल जाकर मेरे लिए चंदन लाओ। तो हम 40 घंटे में अभी ट्रेन से उधर पहुंच जाते हैं, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस या कोई एक्सप्रेस, लेकिन उनके पास ना एक्सप्रेस थी ना बैलगाड़ी थी ना कुछ था। 90 साल के आयु में माधवेंद्रपुरी वॉकिंग करते हैं अपना, और फिर वर्णन आता है आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। स्वप्न देखी पुरी गोसाई रहेला प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पाली बारे गेला पूर्व देश, इसमें पड़ता है ना, तो पूर्व देश की ओर चले गए भगवान की आज्ञा को लेकर। तो माधवेंद्रपुरी जाते हैं आगे बंगाल से होते हुए और शांतिपुर जाते हैं अद्वैत आचार्य के घर, और अद्वैत आचार्य उनको देखकर बहुत हर्षित होते हैं और अद्वैत आचार्य उनसे दीक्षा लेते हैं माधवेंद्रपुरी से। और फिर माधवेंद्रपुरी वहां से आगे निकलते हैं तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, रेमुनाथ कैल गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखिया है विवल मन। तो रेमुना जाते हैं और गोपीनाथ का दर्शन करते हैं, उनको देखकर वो आनंदित हो जाते हैं और फिर जाते हैं और जैसे टेंपल हॉल के अंदर जाते हैं डिटेल्स को देखते हैं तो पूछते हैं, क्योंकि इतना अच्छा सेवा हो रहा है तो उनको ये भी लगा कि यह बहुत अच्छा भोग भगवान के लिए बनाते होंगे। तो भक्त जहां भी जाता है वो सीखना चाहता है कि मैं फिर मेरे स्थान में जाके उस चीज को लागू करो। तो पूछते हैं क्या क्या भोग लागे, ब्राह्मण ने पूछे बुझिला क्या क्या भोग लगता है, ब्राह्मण को पूछते हो तो वो कहते हैं उत्तम भोग लागे था बुझिया, उत्तम भोग लगता है यहाँ बहुत अच्छा अच्छा। इस प्रकार से वंडरफुल कन्वर्सेशन यहाँ दिया है बंगाली भाषा में और बहुत ही अद्भुत है। 200 प्यार है इस चौथे अध्याय में। तो वो कहते हैं क्या भोग लगता है, संध्या भोग लागे क्षीर अमृत के लिए नाम, द्वादश मुत्रात्रे परे अमृत समान, 12 बर्तन मिट्टी के बर्तन भोग लगते हैं शाम के समय, और ऐसी खीर है जिसका नाम अमृत के लिए है, अमृत के लिए खीर की। गोपीनाथ रक्षीर बलि प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वी ते आये छे भोग कहा नहीं आर। कहते गोपीनाथ का ये खीर इतना प्रसिद्ध है जिसका नाम गोपीनाथ की खीर कहते हैं अमृत के लिए, कि पृथ्वी में ऐसा भोग किसी भी मंदिर में नहीं लगता है। तो इस प्रकार जब वो उनको भोग ही लग रहा था तो उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे मिल जाए ताकि मैं फिर जब मेरे वृंदावन जाऊंगा मेरे गोपाल के लिए भी वैसे ही बनाऊंगा। तो लेकिन इनकी खासियत क्या थी कि अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, आयाचित प्रति का मतलब है अपने लिए नहीं मांगना, भगवान के लिए मांगने के लिए तैयार है, जैसे वो चंदन मांगते जाकर भगवान के लिए। तो जैसे